Anche lei.
Non mi dita a medina. Tasmei sri sri. Pancha kalpa sarvyasya. Tripasin bhubhaye vacha. Patitanam pavanesya. Vaishnavibhyo. Namo mahabhadanyaya. Krishna prema pradayate. Krishnaya Krishna Chaitananam Gaurattihi Gave Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Padabhaktaya Yam Praprajantam Anupetam Apeta Krityam Dvaipayano virahaka tarya juhava putreti tanmayataya sarvo bhinedo tam sarva bhutaridhanam bhuvan tavai vasmi najivami tvaya vina iti vijjaya radhe tangay mama charana Yatakin karichu vauta khaluka kibani Nityam parasya purushasya sikhanda mole Jasya kadarasa nidhe prishubhan jaya Tatake likunya bhavanam Bhajami radham maravinda netram Marami radham manusmitasyam Badami radham karuna bharadram tato mamannasti gatir Shyama sundar sikhanda shekhar smerahas murali manohar Radhika rasikaman kripanidhe svapriya charna kunti Rananath vishubhan Timo khap jara salo la satpat. Apare? Salo la satpat. Radhika pada tale kriti. Sami rasi kundasi. Light now. Srimad Bhagavatam. Kal पुण्यवत ब्रजभूवर जदयन लिंग श्लोक की व्याख्या कर रहा था विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार एक समय की बात है चैतन्य महाप्रभु के समसामयिक शिवाजी हुए महाराष्ट्र में तो उनके गुरु समर्थ रामदास थे वैष्णव थे समर्थ रामदास किंतु शुद्ध गौड़ीय वैष्णव नहीं साधारण रूप में इस तरह से बचता बहुत त्यागी बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे तो उनके जितने शिष्य थे उन लोगों ने समर्थ रामदास को कहा कि शिवाजी राजा हैं धनी हैं सम्मानी व्यक्ति हैं इसलिए आप उनको अधिक आदर करते हैं और हम लोग गरीब हैं या साधारण व्यक्ति हैं इसलिए आदर नहीं करते उनको अधिक सम्मान देते हैं समर्थ रामदास जी ने कहा ऐसी तो बात नहीं ऐसी बात नहीं तुम लोग जैसा सोचते हो मैं सबको प्यार करता हूं किंतु सबको प्यार करने पर भी थोड़ा सा विचार करता हूँ और विचार करके वैष्णव चिनिया आदर करीबे जबे, जो जैसा वैष्णव है, जिसका आधार जैसा है, जिसकी भक्ति गुरु भक्ति या भगवत भक्ति जैसी है, यह विचार करके उनको मैं स्नेह आदर करता हूँ। ये बात तो ठीक है, सबको बराबर नहीं, बराबर करता हूँ ये बात तो ठीक है, किंतु जिनका आधार वैसा नहीं है नहीं समझते, मैं सबको एक समान। जैसे सूरज की रोशनी सब पर पड़ती है, किंतु घर में अंधकार यदि है तो वहाँ पर रोशनी नहीं आएगी। पानी सब जगह बरसता है किंतु ऊंचे टीले पर वह नहीं ठहरता, इसलिए उसमें वैषम्य वर्षा में नहीं है, बादलों में नहीं है, ये वैषम्य किस में है? आधार भूमि में है। इसलिए जो जैसा ग्रहण करता है वैसा ग्रहण करता है। जिनमें क्रोध है, जिनमें काम है, जिसमें एकांतिकता गुरु सेवा नहीं है, जो गुरु जी का आदेश नहीं पालन करेंगे, विशेष करके जिसमें क्रोध है, उसका आधार ठीक नहीं है, इसलिए हमारी कृपा को नहीं समझेंगे, वो पक्षपात लगाएंगे, क्योंकि वस्तु को ग्रहण नहीं कर पाते। वस्तु को ग्रहण करने के लिए पात्र होना चाहिए, वस्तु तो आती है संभाव में, गुरु उपदेश करते हैं सबको संभाव में, किसी को ऊंचा नीचा उस रूप में नहीं देखते, किंतु जहाँ चिल्ला है वहां पर पानी बरसने से वो तो नीचे आएगा, जहां पर कि गड्ढा है वहीं तो पानी भरेगा। इसलिए मैं सबको प्यार करता हूँ, किंतु जिसको क्रोध है, जिसको कामनाएं नाना प्रकार की हैं, नाना प्रकार की कामना रहने से क्रोध होता है, विशेष करके प्रतिष्ठा की कामना रहने से ये क्रोध होता है। और जिनको प्रतिष्ठा की लालसा नहीं है, जो वैष्णव है वो नम्र होता है, विनयी होता है। जैसे महाराज युधिष्ठिर थे ना, उनको किसी को उनका कोई उनका शत्रु नहीं था, और दुर्योधन जैसे लोग को, दुशासन जैसे बदमाश लोगों को, दुराचारी लोगों को, सुयोधन दुशासन नहीं सुशासन उनको कहते थे, और तभी उन पर दोषारोप करते थे, बिगड़ते थे तो भी सोते थे। इसलिए उनका दोष नहीं, गुरु का जल का भगवान का दोष नहीं, उनकी कृपा सब पर वर्तमान है, किंतु जिनको दंभ है, क्रोध है, अहंकार है, उन पर वो कृपा ठहरते हैं। इसलिए जिसको कम क्रोध है, जिसको एकदम क्रोध नहीं है, जिसको थोड़ा बहुत क्रोध है, उससे भी थोड़ा सा कम क्रोध है, उस पर उनकी कृपा प्रतिफलित होगी। जिसके अंदर में कामनाएं हैं उन पर कृपाएं कम प्रतिफलित होंगी, उसी के आधार पर जैसे जैसे उनका ये मन वेग, क्रोध वेग, जीवा वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग जिसका कम होता गया है, उस पर उनकी कृपा अधिक प्रतिफलित होगी। और जिस पर अधिक है ये सब चीजें, कृपा होने पर भी उसको ग्रहण नहीं कर सकता। मैंने कहा जी देखो हमारी बात की सत्यता के लिए इसको ये तुमको कहता हूँ कि देखो कभी मैं परीक्षा लूंगा समय आएगा, और सचमुच में मैं जैसा पक्षपात तुम लोग कह रहे हो वैसा हमारे अंदर नहीं है, हम तो गुण का आदर करते हैं। एक दिन रात में, आधी रात के समय में बड़ी जोर से वर्षा हो रही, घनाघोर वर्षा, जाड़े का समय, और भीषण जंगल में जहां पर कि बाघ भालू हाथी इत्यादि रहते हैं, जैसे कि हम लोग महाप्रभु जी आए थे जिस वन से, हम लोग रेल पथ से जाते हैं, तो इतना भयंकर दिन में हाथी भालू बाघ गंडाल घूमते रहते हैं, कितना घनाघोर जंगल। ऐसे जंगल में किसी स्थान पर उनका आश्रम था, स्वामी राम उनका रामदास, उनके पास में कोई क्वचित एक दो शिष्य रहते थे, नहीं तो कोई नहीं रहता था, किसी को रखते नहीं थे। एक रात में उनके पेट में बड़ी जोर से पीड़ा उठी, बहुत दर्द हुआ, बड़ी जोरों कराहने लगे। अब वो शिष्य जो वहां पर था, वो जाकर के उनके जितने शिष्य थे उनके घर पर जाकर के सबको खबर दिया, अब तो वो मरने मरने को हो गए हैं, बचने की आशा नहीं जो कि कुछ कर कर। शिष्य लोग आ रहे थे, उन्होंने कहा जी हमारे बचने का एक ही उपाय है, मैं जानता हूँ दवा, किंतु दवा लाना बड़ा भारी कठिन है। यदि कोई बाथिनी का दूध ला दे और मुझे थोड़ा सा पिला दे या पेट पर लगा दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सुन करके जितने उनके शिष्य से सब बस खत्म, गुरु भक्ति खत्म हो गई। शिवाजी को खबर दी गई, शिवाजी भी आए, शिवाजी ने सुना, सुनते ही उन्होंने कहा ठीक है अभी जाता हूं, गुरु जी मैं प्राण देकर के भी आपके लिए सेवा करूंगा। बस उन्होंने अपने राजकीय वस्त्र उतार लिए, उतार करके एक सोने का पात्र लिया, बाघनी का दूध सोने के अतिरिक्त किसी चीज में नहीं ठहरता, जैसे पारा है ना, पारा ऐसे लेने पर छेद करके वो चला जाएगा, उसके लिए वैसा पात्र होना चाहिए। बाघिन का दूध किसी भी पात्र में नहीं रह सकता, उसमें साथ ही साथ में एक मिनट के अंदर में कीड़े लग जाएंगे या कुछ हो जाएगा, इसलिए वो सोने का पात्र चाहिए। तो सोने का पात्र एक लिया और साधारण रूप में तलवार को भी रख दिया, रख करके निश्चिंत भाव से निर्भय होकर जंगल में गए। वहां देखे एक जगह जाते जाते एक बाघिन अपने दो बच्चों को दूध पिला रही, बड़े धीरे से नम्रता से, हिंसा की भावना संपूर्ण रूप से छोड़ दिया और छोड़ करके धीरे धीरे उसके पास में चले गए, हाथ से पुचकारा उसे और थोड़ा सा दूध उसने से दिया। बाघिन ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप ने, वो भी भाषा समझती है, लोगों की भावना समझते हैं, थोड़ा सा यदि उसमें हिंसा का भाव हो तो साथ ही साथ काटेंगे, साथ ही साथ आत्मा कर देंगे, उनके अंदर में हिंसा का भाव ही छोड़ करके और चुपचाप चले। निर्भय थे, बलवान भी थे, यदि आक्रमण करता तो उसका प्रत्युत्तर भी दे सकते थे, साधारण नहीं थे। उनके साथ में बखनखा और क्या क्या सब रहता था जो कोई जानता नहीं था, अफजल खां को ऐसे ही मारा था। बस जाकर के चुपचाप बैठ के पुचकार करके बेटे जैसे बंद करके और थोड़ा सा दूध उसमें ले लिया, लेकर के चले। बाघिन जैसे जैसे ही देखते रहे बड़ी प्यार से, गुरु जी को लोग देख करके स्तंभित रह गए। कहा जी आप देखो, मैं मुझे रोग नहीं था, मैं परीक्षा लेना चाह रहा था जिस शिष्य हमारे कैसे हमारे लिए प्राणों का बलिदान कर सकते हैं कि नहीं और हमारी बात को सुनते हैं कि नहीं। अब बतलाओ ये, अब इसमें हमको किसको प्यार करना चाहिए बतलाओ, तुम ही लोग बतलाओ, अब रह दो जो प्राणों का थैली पे लेकर। तो गुरु जी के जो आदेश को माने, हमारे गुरुवर को आदेश को मानेगा, निष्कपट सरल को मानेगा, जिसमें क्रोध पाखंड नहीं रहेगा, क्रोध का काम करने पर भी जो स्थिर रहता है उसको क्या कहते हैं, शांति, अव्यक्त कालत्व, विरक्ति मान सुन, ये गुण तो होने चाहिए ना भक्तों को। घर छोड़कर को, बीवी छोड़ करके आए, रुपये पैसे जायदाद छोड़ करके आए, और ये छोड़े से क्रोध को नहीं छोड़ सकते हैं। क्रोध को यदि गुरु कहता है कि भाई मत करो तो और बिगड़ जाता है, तो फिर बतलाओ क्या होगा, वो समझेगा किसी जीवन जन्मांतर में गुरु जी की बात को और भक्ति की बात को समझेगा, इन चीजों को समझो तब फिर ये चीजें, जैसे सोने में वो दूध आया ना बाघिन का, तो ये सोने का वो बर्तन होगा जिसमें कि ये सब गुण रहे, शांति, रवक्त काल, विरक्ति, मान शून्यता, मान शून्यता नहीं रहने से क्रोध होगा, मान की लालसा रहती है, इसलिए इस चीजों को समझो। ये कर करके जब भजन करेगा तो ये चीजें तुम्हारे अंदर में ठहरेगी और जगत तुम्हारे चरणों में गिरने के लिए बाध्य होगा, शासन के द्वारा, शक्ति के द्वारा, रुपए के बल पर या शक्ति के बल पर, क्रोध के बल पर किसी को भी हृदय नहीं जीता जा सकता, ये समझने की चेष्टा करो। हमारा जीवन बहुत बहुमूल्य है, बहुत बहुमूल्य है हम लोगों का जीवन, सब कुछ छोड़ करके आए, ये क्रोध नहीं छूटता, अपने क्रोध पर क्रोध करो, अपनी कामनाओं पर क्रोध करो, अपनी वासनाओं पर क्रोध करो, प्रतिष्ठा की भावना के ऊपर में हमें क्रोध करना चाहिए, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे, तब तो कोई समस्या रह जाएगी, कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। और ये चीजें तुमको कहना नहीं पड़ेगा, हमने संस्कृत नहीं पढ़ा बतलाओ तो, न कोई अक्षर अनुस्वार विसर्ग पढ़ा, और इनकी टीका बतला रहा हूँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बतला रहे हैं, उसका अर्थ बतला रहे हैं, उसका सार बतला रहे हैं, जिसको बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ का नहीं कर सकते। ये कैसे हो रहा है? ये समझे गुरु कृपा से, गुरु जी की वैष्णव की सेवा के फल से ऐसा हो रहा है। इस चीज को समझो, साधारण एक प्रत्यक्ष उदाहरण बतला रहा हूं। आज विश्व में जहां जहां गया, हमारे जैसे कुछ लोगों को जो अंग्रेजी नहीं जानते, संस्कृत नहीं जानते, हिंदी जिनकी भाषा ठीक नहीं है, जिनको पैसा नहीं है जाने का, ऑफिस में जहां जहां गया हजारों लोगों ने आदर किया, बड़े बड़े विद्वान से लेकर के सभी लोगों ने। क्यों किया? कैसे आया ये सब चीज? मैं देखता हूं कि मैं बहुत तुच्छ हूं, मैं यहां उपलब्धि कर रहा हूं, यही गुरु कृपा है। पंगुलंग है गिरी, क्या है वो? मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम जत कृपा तमहम परमानंद माधवम। गुरु जी का नाम परमानंद था, इसे वो कह रहे हैं गुरु जी की कृपा से आज मुकम करोति वाचालम। हमारे जैसा मुख व्यक्ति आज देखो तो विश्व में मुखर हो उठा, और केवल आल्प्स पर्वत नहीं, हिमालय, आल्प्स पर्वत, कैलिफोर्निया के सीरीज वहां पर लगे हुए हैं पहाड़ियों के, हजारों पहाड़, पहाड़ियां, बर्फ एकदम लदा हुआ, उसको लांघ करके और महाप्रभु का वाणी का प्रचार किया। बड़े बड़े सब प्रश्न आए और ऐसे चुटकी बजाते हुए ही उसका समाधान होकर के लोग आश्चर्यचकित रह लेते। सारे इस्कोन के मिल करके बड़े बड़े विद्वान भी कुछ नहीं कर। यह है गुरु की बात। इसलिए उस दान से सीखना चाहिए, समझना चाहिए, क्रोध दंभ पाखंड ये सब छोड़ना चाहिए। धीरे धीरे खूब सरल सरल होइले गोरा शिक्षा बुझी आलोई दे, माने क्या? सरल होने अंतर बाहर सम व्यवहार अमानी मान दहवे। अरे हमारे गुरु वर लोग कितना जोर जोर से हाथ उठा करके कह रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। नित्यानंद प्रभु हाथ उठा करके ऐसे कह रहे हैं, यथेष्टमरे रात हरि हरि कुरु ध्यान अनिशम ततो वा संसारम बुधि तरण दायो मई लगे इदम बाहु स्फोटी रटति रटयंती भजे नित्यानंदम भजन तरु कंदम। भजन तरु कंदम माने क्या? भजन तरु कंदम माने क्या बताओ? भजन तरु कंदम माने कंद माने, अरे कंद माने मूल। भजन तरु का ये कंद माने मूल, नित्यानंद प्रभु जी की कृपा है ऐसा समझो। मूल कौन सी मूल? मूल बहुत सी होती है, इधर उधर इधर जो पेड़ को पकड़, और नीचे वाली जो होती है वो कंद कहलाती है, मूल कंद, एकदम नीचे जाकर के पानी को लेकर के उसको बढ़ाती है। भजन करु कंदम निरवधि, चीज को समझो तब फिर क्रोध नहीं आएगा, काम नहीं आएगा, मन बे क्रोध बे ये विवाह बे उधर वत ये सब दूर हो जाएंगे, और साथ साथ में पात्रता आ जाएगी, और होगा क्या? परिश्रम दिष्पा कृपया शीत स्वबंधन कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, बंधन में आ जाएंगे। इस चीज को हम नहीं समझते हैं। मरने का दिन दो चार है, काल सिर पर मंडरा रहा है, कब आ जाएगा काल कोई ठीक नहीं, झूल रहा है, और हम अपने दंभ में क्रोध में कामना में हम सब कुछ भूल रहे हैं, सोचते कि जगत लोग मर जाएगा, हम नहीं मरेंगे, केवल ऐसी स्थिति होगी, पैखाना टट्टी आएगा, कोई सेवा नहीं करेगा, और उस समय आंखें बिल बिलाएंगी, और उस समय संभालना होगा, याद पड़ेगी उस समय, प्राण नहीं निकलेंगे, थोड़े से बुखार में ही कुछ छटपट छटपट हो जाते हैं, और उस समय की स्थिति याद करो। यदि भगवान भजन ऐसे निष्कपट रूप में हम नहीं करेंगे तो ये शरीर का कोई मूल्य है? हमारे गामा जो विश्व विजयी थे, समस्त पहलवानों को जीत करके आए थे, और अंत में उनका एक हाथ से ग्लास का पानी नहीं उठा सके, बिलबिलाते हुए मरे। ये जवाहरलाल नेहरू कितने बड़े प्रधानमंत्री, उनको सभी लोग मानते, मरते समय में उनको पैरालिसिस हो गई और नहीं पानी उठा सके। याद रखो भाई इन सब चीजों को, इसलिए शरीर के बल पर या क्रोध के बल पर अपने पैर मत काटो, सहिष्णु होकर के रहो। ये भागवत की कथा आएगी, सब ठीक हो जाएगी, महाप्रभु नित्यानंद की कृपा होगी। और नहीं तो गुरु वर्गों का भी अनादर करके चला जाएगा। हम तो देखते हैं कि लाखों लोग चले गए, इसलिए भागवत सुनने के पहले ये आधार भूमि बनाना है हमें। समस्याएं आएंगी, बातचीत के साथ में उसका निराकरण किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। ये रहेंगे भी, जन्म मृत्यु मरण शोक रोग मोह ये तो रहेगा, किंतु इसमें रहते हुए भी भगवान का भजन करना चाहिए। सहिष्णु बनो, चाहे गृहस्थ की स्त्रियां हो पुरुष हो, चाहे हमारे ब्रह्मचारी और त्यागी हो, सबको सहिष्णु होना है। थोड़े से ही बात में बिगड़ जाना ये उचित नहीं है, नहीं तो ये सब चीजें कैसे आएंगी? दिन रात भगवत चिंतन सब तो आएंगी ना। हम लोग स्वप्न में भी वैसे ही चीजें देखते हैं, घर में जाकर के बैठते हैं तो विचार करते हैं ये श्लोक का अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है। दिन रात इसी में डूबे रहते हैं। हमारे गोस्वामी लोग कैसे रहते थे? दिन रात डूबे रहते। तब तो ये भाव आएंगे ना, तो आएगा कहां से भाई? इतना सरल सहज मत समझो भक्ति। हम जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति नहीं है, या तो भक्ति का छाया है ना तो भक्ति का आभास। छाया बल्कि एक तरह से ठीक है, आभास ठीक नहीं है। अभी हम लोग भक्ति के आभास में हैं, शुद्ध भक्ति समझते नहीं है। आरोप सिद्धा को या संग सिद्धा को भक्ति समझ रखा है, अभी यही नहीं जानते हैं कि आरोप सिद्धा भक्ति किसको कहते हैं, स्वरूप सिद्धा भक्ति किसे कहते हैं, यही नहीं समझते। शुद्धा भक्ति किसको कहते हैं, नहीं समझते। इसलिए गुरु वैष्णव का आदर करो, उनकी चरण की सेवा करो, खूब नम्रता के साथ में रहो, क्रोध कभी भी ना आने न पाए। क्रोध से कोई डिसीजन मत लो, डिसीजन मैंने कोई सिद्धांत ग्रहण मत करो, वो तुम्हारे विपरीत जाएगा। आचार विचार और चरित्र को शुद्ध रखो। बहुत से लोग ऐसे हैं, उपदेश तो खूब देने में पंडित, बड़े बड़े पंडित हैं, किंतु आचरण में नहीं लाते, चरित्र ठीक नहीं, फिर क्या होगा? जिसका चरित्र ही नहीं ठीक है वो क्या भजन करेगा? इसलिए महाप्रभु ने छोटे हरिदास को निकाल करके बाहर कर दिया। जबकि भी इनका दोष नहीं था, ये शिक्षा देने के लिए उनको बाहर किया। ये भी समझ रखो, डूब करके पानी को पीने से महाप्रभु जी जान लेंगे, वैष्णव लोग गुरु भी जान लेगा, किंतु कहते नहीं है। गुरु को धोखा देने की चेष्टा मत करो, वैष्णव को धोखा देने की चेष्टा मत करो। अंतर बाहर बराबर रह करके, सम व्यवहार अमानी मानद होकर के इनको सुनो। ये समस्या है नहीं सुनने का, नहीं सुनते हैं हम लोग, इसीलिए इसमें हम जानते हैं। मान लें कि सभी लोग सुनते हैं गुरु जी के यहाँ, किंतु जिसकी श्रद्धा गुरु जी के ऊपर अधिक है उनको आलस्य प्रमाद भी नहीं आएगा, उनको वो जल्दी से पूरे समझेंगे। जिनकी श्रद्धा कम है वो कम समझेंगे, जिनकी श्रद्धा नहीं वो एकदम नहीं सुनेंगे समझेंगे, उनके समझ में खाक पत्थर कुछ आएगा, वो कहते हैं उसका विपरीत समझेंगे। गुरु जी की बातों को हमने सुना देखा, उसमें कुछ लोगों ने विपरीत ही समझा। गुरु जी ने कहा कि हमारा दाढ़ी वाला और केश वाला चातुर्मास्य वाला हमारा ये रख लेना, फोटो रख लेना, नहीं तो कहेंगे यही हमारे ये सब जिनको मैंने दीक्षा दी है, दीक्षा दी नहीं, जिन्होंने दीक्षा जबरदस्ती ली है हमारे विचारों का पालन उनके लिए रख लो, तो कहेंगे ये चातुर्मास्य व्रत नहीं करते थे, कहेंगे कुछ दिनों के बाद में। और करते हैं कुछ लोग, दाढ़ी तो नहीं कमाते, कैंची से काट लेते हैं थोड़ा, कुछ लोग करते नहीं हैं, कुछ कहते बैगन खाने से क्या भक्ति दूर हो जाएगी। कोई कोई दिन में रोज दो बार चार बार मुंडन करते हैं, ये साफ करते हैं, आईना से मेकअप करते हैं, विशेष करके विदेशी लोग रोज, और बिना मेकअप के उनका चलता नहीं, ये सब भक्ति लाइन नहीं है। किंतु इससे भी पूरा है क्रोध, ये सब सुधर जाएगा। बीड़ी पान खाना ये कोई विशेष हर्ज नहीं बात है। विदेशी संघ से कहा, मैंने एक जगह कहा, अच्छा एक आदमी छिप करके दुराचार करता है और सन्यासी है, और एक आदमी बीड़ी पीता है केवल, दोनों में कौन अच्छा है? बीड़ी पीने वाला अच्छा है, उसका सुधार हो जाएगा। ये बुरा उतना नहीं है, बीड़ी पीना अथवा मांस खाना भी उतना बुरा नहीं है जितना कि संन्यास वेश लेकर के दुराचार और बदमाशी करना है। वो लोग जल्दी से उनका उद्धार हो जाए, पापी का उद्धार हो जाएगा, अपराधी का नहीं। ये लोग तो अपराधी एक तरह से हैं। इन सब विषयों को समझना चाहिए। एक आदमी बीड़ी तो पीता है, सिगरेट पी लेता है चोरी से, किंतु भगवान का नाम करता है, अपनी आदत को नहीं छोड़ पाता। ये कृपा का पात्र है यदि श्रद्धालु है, ये छोड़ देगा भगवान के नाम करते करते, ये छोड़ देगा। किंतु उन लोगों का सुधार होना कठिन है जो कि गोपने से अत्याचार गोरा भरे चूरी। ये सब चीजों से सावधान रहिए, तब इन चीजों को सहज रूप में समझेंगे, कुछ हृदय में धारण कर लेंगे, अन्यथा लाख जन्म में भी नहीं करेंगे। इस चीज को समझो, जीवन बर्बाद मत करो, चाहे गिरी हो चाहे त्यागी हो। अब चलिए, अब इसको हवा में मत उड़ा देना, इसको पालन करने की चेष्टा करो। हम भी, हमारा भी यदि ऐसा दोस्त हमको बतलाओ ये आप ऐसा करते हैं, हम भी उसको छोड़ने की चेष्टा करेंगे। हम जानते हैं हमारे अंदर में बहुत से दोष हैं, किंतु मैं उनको त्यागने की चेष्टा करता हूँ। हम भी साधक ही हैं, हम सिद्ध महापुरुष नहीं हैं, इसलिए हमारे अंदर भी दोष होता है। हमको कब बतलाओ, दूसरों को मत कहो जो तुम्हारे अंदर में दोष है, हमारे हमको केवल कहो और अपने को कहो। दूसरों को सुधारने की अपेक्षा अपनी आत्मा को सुधारने की चेष्टा करो। ये प्रभुपाद जी का कोई है ना ऐसा, आत्म संशोधन करने की चेष्टा करो। दूसरे सुधर जाए उनको मत चेष्टा करो, आत्म संशोधन करने से तुम्हारे स्पर्श से वो भी पवित्र हो जाए। इसलिए आत्म संशोधन करने की चेष्टा हमें करनी चाहिए। गोप्य तपः किमाचरण जब दन्मु स्मरूप लामन्य सार समोधनन्य सिद्धम दृग्धी पिबंति अनुसवाभिनवम दुराप एकांत धाम जसस श्रिय ऐश्वर्यस्य। ये कौन कह रहा है? मां की माथुर स्त्रियां कह रही हैं। और गोपियों ने कौन सी तपस्या की? हमने कल थोड़ी सी इसकी व्याख्या की। कौन सी आराधना? तपस्या में और आराधना में कुछ अंतर है। तपस्या किसको कहते हैं? भगवान को न मान करके भी शारीरिक क्लेश स्वीकार करके किसी चीज को, जागतिक चीज को प्राप्त करने के लिए, जैसे योग है, सिद्धि है, इसको प्राप्त करने के लिए जो शारीरिक क्लेश सहा जाता है उसको कहते हैं तपस्या। जैसे चौधरी ऋषि तपस्या कर रहे थे, भगवान की आराधना नहीं कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि ऐसा करने से हमें तपस्या से एक बल मिलेगा। बल में मिला उनको, एक साथ में 60 या कितना 50 रूप धारण कर लिए, और साथ ही साथ में इंद्र से वैभवशाली अपने महल बना करके 50 स्त्रियों के साथ में शादी करके 10,000 वर्ष तक उपभोग किया संसार का। ये तपस्या इत्यादि का। कोई पानी के ऊपर में चल सकता है, कोई छोटा बन करके कहीं जा, किसी के मन की बात को जान सकता है, कह दे रोग दूर हो जाए, धूल दे दी तो ठीक हो जाए। ये सब चीजें को तपस्या कर, जैसे हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की, प्रहलाद महाराज ने आराधना की। भक्त लोग आराधना करते हैं और दूसरे लोग तक किसी चीज की प्राप्ति के लिए जागतिक उसको तपस्या करते हैं। ये तपस्या में और आराधना, आराधना माने क्या था? आराध और उसमें कोई प्रत्यय या कुछ लगा हुआ है तब ये आराधना शब्द बना। राधा जी जो का जो कार्य है उसको जो करता है ये आराधना। आ माने सम्यक रूपेण, राध राध माने प्रीति करना, किसका? कृष्ण का। कृष्ण की प्रीति को संपूर्ण रूप से जो करते हैं, चेष्टाएं करते हैं, तन से, मचन से, वचन से, आत्मा से, सारी इंद्रियों से, उनको कहते हैं आराधना। तो गोपियों ने कौन सी ऐसी आराधना की कि अमुष्म रूप, अमुष माने ये जो कृष्ण चारणों से लड़ रहे हैं, लावण्य सार, लावण्य का सार, इसमें बैकुंठाधिपति जो नारायण है, लक्ष्मी के नारायण, वो भी बड़े सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। किंतु राम और नारायण जब एक साथ में खड़े होंगे तो कौन सुंदर होगा? शरासन लिए हुए दशरथ के पुत्र अजय, क्यों? वो कुछ देखते ही दौड़ करके आलिंगन करने आएंगे, बातचीत करेंगे, और नारायण जी अपने आसन पर बैठे हुए ऐसे सब दूर से प्रणाम कर रहे हैं बस, और ये क्या करेंगे? प्रेम से उसे बातें कर, मैं तुम्हारे लिए बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा हूं, प्रेम से बोलेंगे। या प्रेम भी एक सौंदर्य है, केवल ऊपरी सौंदर्य सौंदर्य नहीं है, यदि उसके अंदर में प्रेम प्रीति और ये जो आत्मा के गुण हैं उनमें न रहे तो वो सौंदर्य नहीं है। इसलिए राम का सौंदर्य, राम और द्वारकाधीश जब खड़े रहेंगे, राम के साथ में बंदर भालू कपि ये सब रहेंगे, और कृष्ण के साथ में जबकि जादव वहां के द्वारका के रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि सब रहेंगी, और सांब प्रद्युम्न अनिरुद्ध और ये सब लोग रहेंगे, बड़े बड़े सुंदर लड़के नाती पर नाती, बलदेव जी साथ में रहेंगे, तो कौन सुंदर लगेगा? द्वारकाधीश, क्यों? उनमें प्रेम की प्रकाशता अधिक है, प्रेम उसमें अधिक प्रकाशित है। राम है इतने बंदर भालुओं पर भी कृपा करते हैं सबको, किंतु द्वारका में उनके मित्र हैं कौन? अर्जुन जैसे मित्र हैं, जिनके पलंग पर सो करके कृष्ण अपनी भुजाओं से अर्जुन का पैर पकड़ करके अपनी छाती में रखते हैं, और उनके रोम रोम से निकलता है कृष्णा कृष्णा, और कृष्ण इनकी आराधना करते हैं, किनकी? अर्जुन की सेवा करते हैं। क्या सेवा? रथ चलाते हैं, घोड़ों को धोते हैं, अर्जुन की तो बात छोड़ो, और घोड़ों के पैर दबाया जाता है, जानते हो? एक होता है लोहे का, उसमें रख करके उसी से और पैरों को ऐसे मलते हैं, उनको टहलाते हैं, तब घोड़े चलते हैं, ऐसे नहीं कृष्ण को पानी पिलाते थे, घोड़ों की सेवा करते थे, अर्जुन की तो बात क्या, मालिश करते हैं कृष्ण स्वयं करते, क्योंकि सारथी बने हुए हैं ना, दूसरा तो है नहीं। घोड़ों को जब थक जाते थे रथ से उतर जाते और घोड़ों को सहलाते, उनको पैर दबाते, उनको सेवा करते, और फिर उनमें नया उत्साह भर करके फिर लगाते। तो जिनके घोड़ों की सेवा कर रहे हैं ये कृष्ण, राम ऐसा नहीं करते, अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं ये, इसलिए इनमें सौंदर्य रूप के अतिरिक्त भी गुणों का भी सौंदर्य इसमें है, प्रेम अधिकता। और जहां पर कृष्ण खड़े होंगे ये सब श्यामे रमा रमण सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहि सब जगत जनस्य श्यामस्य वाम भुज बद्ध तन कदाहम स्वाम इंदिरे विरल रूप भराम भजामि। इंदिरे, इंदिरे माने समस्त लक्ष्मियों की भी मूल लक्ष्मी जो राधिका जी है, यहाँ पर इंद्रे, हे इंद्रे, हे राधिके, हे स्वामिनी जू, किशोरी जू, जब वाम हंस में कृष्ण आपको इस प्रकार से रखे हुए आलिंगन किए हुए, जब मधुर मधुर बंसी बजाते हैं उस समय श्यामे, हे श्यामे रमा रमण सुंदरता वरिष्ठ, रमा रमण जो कौन है? लक्ष्मीपति जो नारायण हैं, उनको भी सौंदर्यता में वरिष्ठ, उनसे बहुत ऊंचे, विशेष करके चार माधुरियों से युक्त। कौन कौन चार माधुरी? प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, बंसी माधुरी, लोक माधुरी, जो कृष्ण में सबसे अधिक है, इसलिए वो सौंदर्य अधिक है। तो इसको कहते हैं राधना, राध धातु, ये राधा राध धातु निकला है राधा जी से, राधा जी राध धातु से राधा नाम नहीं है, ये नाम रूढ़ है राधिका। उनके क्रियाओं को उनके भावों को राध कहते हैं, राधना कहते हैं। अपराध माने क्या? ये राधा शब्द से ही निकला है, किंतु ये अपराध राधा जी के भाव का उल्टा, अर्थात तो कृष्ण को, कृष्ण के भक्तों को, कृष्ण के नाम को के प्रति जो उसका वृद्धा आचरण है उसको कहते हैं अपराध। या राध दूर हो जाए माने प्रति दूर हो जाए उसको कहते हैं अपराध। संराध संराधना संराधन अपि संराधना प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम वेदांत सूत्र में भी आया, अपि संराधने सम्यक रूपे राधने राधा जी के भाव के अनुसार में कृष्ण की सेवा जो की जाती है कृष्ण की तिथि के लिए उसको संराधना कहते हैं। और ठीक इसके विपरीत अपराध नमाप, जब भगवान भक्ति और भागवत और भगवत संबंधी वस्तुओं के प्रति उसका विरोध होता है तो इसको कहते हैं अपराध। इसलिए कहते हैं गोपियों ने कौन सी ऐसी आराधना की, अमुष्मरु ऐसा लावण्य का साथ, लावण्य नहीं, लावण्य तो लक्ष्मी नारायण में भी है, रुक्मिणी और सत्यभामा में भी है, ये लावण्य है, किंतु लावण्य सार ये किस में है, कृष्ण में। केवल इतना ही नहीं, असमोर्ध, असमोर्ध माने क्या, जिनके लावण्य के बराबर किसी का भी नहीं है, बराबर नहीं है, अधिक की तो बात क्या, तब उसको कहते हैं असम ऊर्ध, न सम अ माने न, न सम अथवा ऊर्ध नहीं है, केवल यही नहीं, अनन्य सिद्धम न अन्य सिद्धम, उनका रूप किसी भी आभूषण से, कपड़े से, अलंकार से, आभरण से ये नहीं बना है, नहीं सुंदर लगता। एक काली कलूठी लकड़ी लकड़ी लड़की लड़की है, टेढ़ी मेढ़ी उसकी शक्ल है, खराब उसको ठीक करो, दांत निकले हुए हैं, बड़ी काली कलूठी है, देखने में सुंदर नहीं, 7 दिन हल्दी के पानी से उसे स्नान कराओ, तरह तरह से अबटन लगाओ और उसको पाउडर इत्यादि लगा दो और सुंदर लख लख 1 लाख रुपए का हार गले में पहना दो, सोने के आभूषणों से लगा दो और रात में बिजली के सामने उसको बैठा दो, बड़ी अपूर्व सुंदरी लगेगी। इसी को कहते हैं, उसको कहते हैं वर और उसको कहते हैं कन्या, विवाह के लिए तैयार है, तो उस दिन तो भली अच्छी लगेगी और देख करके सभी कहेंगे वाह वाह बहुत, आज जब विवाह करके घर में जाएगी और जब उसको लग, अरे ये कहां से कलूठी ये लड़की ले आए, कृष्ण का रूप ऐसा नहीं है। कृष्ण यदि खड़े हो आंगने में और नंगे बिल्कुल नंगे हो तो और भी अधिक सुंदर दिखेंगे, यदि कृष्ण के अंगों में यहां धूल लग गई, केशों में धूल लग गई तो और कैसा लगेगा, क्या वो उसमें चार चांद लग जाते हैं या सोना में सुहागा लग जाता है, और भी सुंदर लगते हैं। कहीं चैतन्य महाप्रभु जी के कहीं बदन कमल में कहीं स्याही लग जाए काली बिंदी, वो कैसी लगती है, निखरने लगती है वो। तो कृष्ण का सुंदर सौंदर्य कैसा है, लावण्य सार तो है, अनन्य सिद्धम, कपड़े लत्ते पाउडर आभूषण अलंकार फूल की माला गजरा ये सब की कोई जरूरत नहीं है, उसको देने से क्या होता है, वैजयंती माला फहरा उठती है, उसकी शोभा बढ़ जाती है। ऐसे ही कृष्ण के अंगों में जो कुछ भी दिया जाए, न दिया जाए, बहुत ही अपूर्व सुंदर लगता है। मोर का पंख रख दिया जाए, कोई मुकुट न है, और भी शोभा बढ़ जाती है। कुछ भी न रहे तभी यहां पर कुछ बांध दिया जाए तो वो क्या होता है, अंगद अनंगद, कामदेव को देने वाला बन जाता है। ये आभूषणों के नाम ऐसे नहीं रखे गए, कृष्ण के अलंकार ये बहुत गंभीर उसके अर्थ हैं। मैं जितना ही विचार करता हूँ था नहीं पाता। सिंदूर रखने की पहले होता ना सिंदूरदानी बनती थी, बनता था ना, उसको देख करके हमारे कितने भाव आते हैं, कैसे कैसे क्यों बना, कैसे बना, स्वस्ति, ये सबके विचित्र विचित्र भाव हैं। कृष्ण का प्रत्येक जितना अलंकार आभूषण है सब ऐसे अद्भुत उनके नाम रखे गए हैं। किसी ने कहा कि कृष्ण की आंखों में ये काला क्यों देते हैं अंजन, और काला कर देते हैं, तो काली आंख है उसमें काला और ये भर देते हैं। कितने सुंदर सुंदर विश्लेषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने किए हैं, ये क्यों तिलक, क्यों ये, क्यों मकरी, क्यों ये सब क्यों, किंतु ये न रहे तो भी कृष्ण बड़े सुंदर है। इसलिए अनन्य सिद्धम दृग भी पिबंती, आ कैसा सुंदर रूप और लावण्य सार है, दृग भी पिबंती अनुसवाभिनवम दुराप एकांत धाम जस सहस्य। ये गोपियां देखो कैसी सौभाग्यवान, ऐसे लावण्य सार असमर्थ रूप के मधु का पान आंखों से करती है, मुख से नहीं आंखों से पान करती, और थकती नहीं है पान करते हुए, पलके जहां तहां पर रह जाती हैं, पलक नहीं पड़ती, उसमें आंसुओं का आना भी उनके लिए बुरा लगता है, आंसुओं को पोछती हैं फिर आंसू आ जाते हैं। अटति जद भवन अन्हिकाननम रुटि जुगायते स्वाम पश्यता कुटिल कुंतलम श्री मुखंचते जड़ उदीक्षताम पक्ष कृत दृशा। ब्रह्मा को शाप देने लगे, क्यों बनाया मूर्ख, मूर्ख कहती है जानता नहीं, आंखों को पलकों को क्यों बनाया, इधर कृष्ण का इतना सुंदर रूप और उस पर भी पलके दे दिया और वही बार बार गिरती हैं उसमें आंसू भर आते हैं, कृष्ण का रूप देखे थे एक सेकंड के विरह को, वो कोटि त्रुटि जुगायते, वो क्या है सप्तम श्लोक जुगायते निमिषेन चक्षुषा प्रावृषायितम सुन्नाइम जगत सर्वम गोविंद। ऐसा कृष्ण का सुंदर रूप है, जिसने नहीं देखा वो कल्पना नहीं कर सकता, ध्यान से नहीं होगा, ये भक्ति से होगा। पिवंत अनुसवा, पिवंत अनुसवा माने क्या, जैसे मदिरा आदमी पान करता है, मदिरा पीने वाला उसको छोड़ता नहीं है, पीता 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 चला जाता है, निरंतर पान करता रहता है, ऐसे दुराप एकांत धाम, दुराप माने क्या, बड़े बड़े योगी महर्षि लोग ध्यान में भी जिनका धारण नहीं कर सकते, ऐसा कृष्ण का अद्भुत रूप माधुरी एकांत धाम जसस, जस का एकांत धाम, और श्रीय, श्री का एकांत धाम, श्री माने शोभा सौंदर्य गुण रूप इत्यादि का भाव, यह श्रीय ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का धाम, ऐश्वर्य माने जो नहीं हो सकता है वो भी होना, ये ऐश्वर्य कृष्ण के छह, भगवान के छह ऐश्वर्य हैं, जिसमें कृष्ण में अंतिम सीमा तक है, भगवान के सब रूपों में ऐश्वर्य है किंतु कृष्ण में अद्भुत रूप से है, और ऐश्वर्य का धाम ये है। इसको गोपियां पान करती हैं किंतु उनमें थोड़ी सी गड़बड़ी है, अंतर है उनके दर्शन में और इनके दर्शन में, प्रशंसा कर रही है, जैसे उद्धव जी गोपियों के लिए प्रशंसा करते हैं, आशा महो चरणे बंदे नंद ब्रजे, किंतु वो चीजें इनको अंदर में नहीं आती, हम प्रशंसा करेंगे ये आदमी मथुरा में या वृंदावन में या भारतवर्ष में या होल विश्व में ये सबसे धनी, अमेरिका में गया हम, वहां पर देखा सर्वत्र फोर्ड कंपनी की तरह तरह की मोटर कारें, एक गाड़ी का दाम कम से कम तो 50 लाख या 60 लाख रुपया फोर्ड कंपनी का, उसके लाखों करोड़ों डॉलर एक दिन का आमदनी है और खर्च भी वैसा, विश्व का वही कुछ दिन पहले सबसे धनी आदमी था, तो हाँ, मैं किस लिए कह रहा था ये? किस लिए कह रहा था वो भूल गया, धन के भूल गया भाव। तो एकांत धाम जस ऐश्वर्य सर, समस्त ऐश्वर्यों का वो इनका रूप धाम है। आज हाँ, ये तुलनामूलक देखा, धनी है वो, हम देखते हैं कि बहुत धनी है, किंतु मैं तो ऐसा धनी हो नहीं गया, हो गया धनी ऐसा। ऐसे ही उद्धव जी गए वृंदावन में, देखा प्रेम की धनी कौन है गोपियां, सबसे श्रेष्ठ धनी नहीं हो सके, एक भी पैसा उनके हाथ नहीं लगा, इसलिए मथुरा लौट आए। और इधर में गोपियां, वहां का तृण भी इतना प्रेम में धनी है, जानबूझ करके तृण हुआ है, वहां का तृण क्या है, सच्चिदानंद है। पृथ्वी पर कृष्ण जब कोमल कोमल पैर रखते हैं तो उनके पैरों में कांटा ना गड़े, और कोमल हो इसलिए मैं तीर्ण होकर के रहूंगा, इसलिए घाटे हूं, घाटे में ये सब सच्चिदानंदमय है। पर्वत पहाड़ के टुकड़े हैं वहां गोवर्धन इत्यादि के, ये कैसे हैं सच्चिदानंद, कृष्ण जब आते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, एकदम कोमल स्निग्ध सुगंधित हो जाते हैं। कस्तूरी का भी सैतम किमुत्रम तो हम नैसर्ग की शिला सुगंधी गोवर्धनों में दिशताम, उनकी शिला जो गोवर्धन की हम देखते हैं, हम माया के वजह से ठीक से नहीं देख पाते, परम स्निग्ध परम सुगंधित, जैसे कस्तूरी उसमें लगाया हुआ है, ऐसी कोमल जो कृष्ण उसके ऊपर में बैठते हैं। गर्मी के दिनों में शीतल और शीत ठंडे के दिनों में उष्ण समोष्ण वो बन जाती है, कृष्ण को तरह तरह से सुख देती हैं।